हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। तभी उस पीपल के पेड़ से एक बार फिर से आवाज़ आई थी। अमन के इस काम में कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा कि अगर किसी भी जिन्नात ने उसकी मदद करने की कोशिश की तो अमन को जिन महाराज की उपाधि से हटा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उसे जिन्नातों की दुनिया से भी बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या या 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 या? जैसे ही अमन ये सुनता जा रहा था, उसके चेहरे का पसीना और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि तभी उस पीपल के पेड़ से एक बार फिर से आवाज़ आई थी। अमन के इस काम में कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा कि अगर किसी भी जिन्नात ने उसकी मदद करने की कोशिश की तो अमन को जिन महाराज की उपाधि से हटा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उसे जिन्नातों की दुनिया से भी बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या या 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 या? जैसे ही अमन ये सुनता जा रहा था, उसके चेहरे का पसीना और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, क्या ऐसा भी कुछ हो सकता था? और आखिरकार ऐसी कौन से सफ़ेद तीन जिन्नात हैं जिसने सीधा सीधा परमात्मा दुखी हो गए थे? और ऐसा वो क्या काम कर रहे थे जिसकी वजह से खुद परमात्मा को आकर अमन को उसके बारे में बताना पड़ रहा था? अमन को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, साथ ही साथ उसे बात का रियलाइजेशन भी हो रहा था कि वो सफ़ेद जिन्नातों का महाराज है और उसने जिन्नातों के लिए कुछ भी तो नहीं किया है। ना तो जिन्नातों के लिए उसने वो बड़ी सी महाद्वत आयोजित की है और ना ही कुछ ऐसा काम किया है जिससे जिन्नातों को कुछ भला हो। तो कहीं ना कहीं अमन को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था और वो अपनी नज़रें दौड़ाकर चारों तरफ देख रहा था कि शायद कहीं से कोई उम्मीद की किरण नज़र आ जाए। तभी उसने कल की सी आवाज़ में कहा था, लेकिन फिर परमात्मा, मैं कैसे उन तीन जिन्नातों को पहचान लूँगा जो कुछ ज़्यादा ही बुरा कर रहे हैं? तभी एक बार फिर से आवाज़ आई थी, उन्हें तुम्हें पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहाँ है कहाँ नहीं है तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा, बस सिर्फ तुम्हें उसके लिए अपने आँख और कान खुले रखने होंगे, समझे तुम? ऐसा कहकर वो जो भी आवाज़ थी वो गायब हो चुकी थी। अब अमन काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ सा महसूस करने लगा था। एक तो उसकी प्यारी बीवी को उसे कहीं कुछ पता नहीं लग पा रहा, ऊपर से उसके दादा महाराज कहीं कैद में हो गए थे। अमन को रह रहकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। तभी अमरेंद्र जी आगे बढ़े थे। उन्होंने अमन का कंधा पकड़कर उसे सांत्वना देने की कोशिश की थी और जल्दी ही वो अमन और करिश्मा जी को लेकर अपने बंगले की ओर रवाना हो चुके थे। अमन को रह रहकर अपना पूरा का पूरा घर काट खाने को दौड़ रहा था। उसे रह रहकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसे रह रहकर तारा की याद आ रही थी। तारा के साथ वो किस तरह से टाइम स्पेंड किया करता था, किस तरह से वो रहता था, किस तरह से वो दोनों प्यार करते थे। रह रहकर बार बार सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। अमन का बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। तभी करिश्मा जी अमन के पास आई थी और कहने लगी थी, बेटा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ इस वक्त तू काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन मेरे बेटे, तुझे मेरी बात माननी होगी। अगर तेरे दिल में तारा को लेकर इसी तरह की बेचैनी हुई तो तू कभी भी परमात्मा का दिया हुआ काम नहीं कर पाएगा और ना ही ऐसे तीन जिन्नातों को ढूंढ पाएगा जिन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से सारे के सारे जिन्नातों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। तो जैसे जिन्नातों को ढूंढकर जल्द से जल्द उन्हें सजा देनी होगी। तभी अमन ने करिश्मा जी का हाथ पकड़ते हुए कहा था, लेकिन मॉम, मैं क्या करूं? तारा के बगैर में मुझे कुछ और सोचा ही नहीं जा रहा है, ना ही मुझे समझ में आ रहा है कि मैं तारा के बगैर किसी और चीज के बारे में सोचूं। बोलिए, कुछ करूं भी? इस वक्त मेरा मूड बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा है। तभी करिश्मा जी ने अमन को समझाते हुए कहा था, मेरे बच्चे, मुझे लगता है तुझे पहले परमात्मा का दिया हुआ काम करना होगा। जो तू याद जानता है ना, उन्होंने साफ साफ कहा है, जब तू अपना वो काम पूरा कर लेगा तो तब तारा बेटी खुद बखुद तेरी जिंदगी में आ जाएगी। कहीं ना कहीं करिश्मा जी को मन ही मन में ये बात की बेचैनी हो रही थी कि आखिरकार उनकी बहू को इस तरह से आसानी से कोई किडनैप तो कर नहीं सकता था। आखिरकार थी तो उनकी बहू परी, और परी को किडनैप करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। और जबकि जंगलों में ऑलरेडी करिश्मा जी अमन के पिताजी को ढूंढने के सफर में तारा की शक्तियां देख चुकी थी। वेल, तभी वहीं दूसरी ओर रानी माँ ने नृत्य कार्यक्रम की सारी की सारी तैयारी कर ली थी। वो नहीं जानती थी कि नृत्य कार्यक्रम कब तक चलने वाला था, लेकिन ये जब तक चलने वाला था जब तक कि गुरु महाराज उनके गुरु यानी के गुरु महाराज प्रसन्न नहीं हो जाते और आकर वो तारा की ख्वाहिश पूरी नहीं कर देते। तो कहीं ना कहीं उन्हें अब नृत्य कार्यक्रम शुरू करना था। तारा को भी दूसरी ओर काफी ज्यादा बेचैनी हो रही थी। उसे वो आप अपनी माँ रानी माँ की मदद करने के लिए परीलोक में तो आ गई थी, लेकिन अब उसे एक एक पल परीलोक में काटना काफी ज्यादा भारी लग रहा था, क्योंकि अमन के बिना रह पाना उसके लिए भी नामुमकिन था। उसे बार बार रह रहकर सिर्फ और सिर्फ अमन की याद आ रही थी, अमन के साथ किस तरह से उसने टाइम स्पेंड किया था और कितनी ही क्वालिटी टाइम साथ में बिताया था। वो सारी बातें अमन याद आ रही थी। तब अचानक से तारा को अपने पेट पर अपने बच्चे की किक का एहसास हुआ था। तारा के चेहरे पर अपने आप ही एक स्माइल आ गई थी। इसका मतलब साफ था, तारा का बच्चा जो कि इस वक्त उसके पेट में था, वो तारा को उदास भी नहीं होने दे रहा था। और उसने अपनी माँ को किक मारकर इस बात का एहसास कराया था कि आपको दुखी और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ और आप अकेली नहीं है। तो ये रियलाइज होते ही तारा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी और उसने दिल से नृत्य कार्यक्रम में भाग लेने का फैसला कर लिया था। जल्दी से तारा परी के लिए सोने का ये ड्रेस लाई गई थी जो बड़ी ही खूबसूरत थी। तारा परी उसे पहनकर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सात परियों का एक साथ नृत्य कार्यक्रम शुरू हो रहा था। एक साथ सात परियां वहां पर नृत्य करने वाली थी और उनके नृत्य जब तक चलने वाला था जब तक कि गुरु गुरु हाजिर नहीं हो जाते, क्योंकि कुल गुरु को नृत्य काफी ज्यादा पसंद था, स्पेशली परियों का। तो जब भी रानी माँ को किसी भी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था तो उसी तरह से नृत्य के द्वारा अपने कुल गुरु को प्रसन्न करके अपना वो काम करवा लिया करते थे। लेकिन असुरों के मामले में वो ऐसा नहीं कर पाई थी, क्योंकि उन असुरों ने सिर्फ और सिर्फ रानी माँ को दो दिन की ही मोहलत दी थी और नृत्य कार्यक्रम चलते हुए सात दिन से ज्यादा भी हो जाया करते थे। तो इसीलिए रानी माँ के पास उस वक्त नृत्य कार्यक्रम करने का समय नहीं था। अगर उनके पास समय होता तो नृत्य कार्यक्रम करके कुल गुरु को प्रसन्न करके असुरों का सर्वनाश करवा सकते थे। लेकिन तारा परी ने अपनी सूझबूझ से उन्हें शुरू से मुकाबला कर लिया था, तो कहीं ना कहीं ये बात रानी माँ को काफी ज्यादा खुश कर रही थी। वेल, जल्दी ही एक बड़े से नीले सरोवर के ऊपर बहुत ही सुंदर सा स्टेज सजाया गया था। चारों तरफ सुगंधित फूलों की खुशबू आ रही थी और उन सब के बीच में से हल्का हल्का सफेद धुआं उड़ रहा था और उनके बीच में से डांस करते हुए सात परियां, जो अप्सराओं से भी ज्यादा खूबसूरत थी, जिन्हें अगर कोई नॉर्मल इंसान देख ले तो बस देखता ही रह जाए।
सभी सात परियों यानी के तारा परी, इस समय सात परियों ने सोनल परी, रीत परी, तारा परी, साथ ही साथ बाकी की कुछ परियों और ने मिलकर सात परियों ने नृत्य करना शुरू कर दिया था। उनके नृत्य बड़ा ही मज़ेदार था। पूरा का पूरा परलोक उनके नृत्य की धुन से दहल उठा था। वहीं उस राक्षस के कानों में भी तारा परी के नृत्य की दलक सुनाई दे रही थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो राक्षस मन ही मन में सोच रहा था कि एक बार ये समय गुजर जाए उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देगा और तारा परी को अपनी दुनिया में लेकर जाएगा, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन तारा परियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता था। एक राक्षस का अंश का वो अपना एक अंश वो पृथ्वी पर भेज चुका था, लेकिन वो भी जान चुका था, तो इसीलिए उसने डिसाइड कर लिया था कि तारा के माँ बनने से पहले पहले वो उसके साथ जिस्मानी रिश्ता चाहे किसी भी इंसान के रूप में ज़रूर बनाएगा और वो रिश्ता बनाने के बाद उसका बच्चा हमेशा के लिए इस दुनिया से पैदा होने से पहले ही मर जाएगा। तो ये सोचते हुए उस राक्षस ने मूर्छित अवस्था में ही वाली बड़ी में अपने कड़े मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया था, क्योंकि तारा परी ने उसकी कुछ शक्तियां ले ली थीं जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था अगर वो अपने मंत्रों का उच्चारण करेगा तो उसके मंत्रों के साथ साथ उसकी माँ के मंत्र, उसकी माँ की शक्तियां भी उससे मिल जाएगी और एक बार फिर वो अपने किसी न किसी अंश को पृथ्वी पर भेजकर तारा के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाने पर मजबूर कर देगा। तो यही सोचते हुए उस राक्षस ने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी ओर अमन ने अब कड़ा डिसीजन ले लिया था कि वो अब पहले उन ऐसे जिन्नातों को ढूंढेगा जो ज्यादा ही बुरा काम कर रहे थे इंसानों के साथ, लेकिन वो जिन्नात कौन थे उसके बारे में पता लगाकर वो उनको सजा देगा और अपनी तारा के आने का इंतजार करेगा। इसके पास लिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो उसे अगली सुबह अमित से मिलने के लिए भी जाना था। वो अच्छी तरह से जानता था कि अमित इस बात के बारे में जरूर कुछ न कुछ बता देगा कि उसके साथ कौन लड़की थी जो उसे अपने कमरे में लेकर जा रही थी, वो भी नशे की हालत में। तो ये भी अमन कहीं ना कहीं जानना चाहता था। तो उसने सोच लिया था अमित से मिलने के बाद वो उन जिन्नातों की तलाश करनी शुरू कर देगा जो जिन्नात इंसानों को कुछ ज्यादा ही नुकसान पहुंचा रहे थे। तो यही सोचते हुए अमन सोने की कोशिश करने लगा था, लेकिन उसकी आंखों में दूर दूर तक कोई भी नींद नहीं थी। उसे रह रहकर तारा परी की बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी। वो उसे अकेले बेड पर सोना उसे ऐसा लग रहा था मानो कि वो कांटों भरे बिस्तर पर सो रहा हो। अमन को एक पल के लिए भी नींद नहीं आई थी। वो अमन ने सोचा कि उसे इस वक्त नहीं सोना चाहिए, उसे जो काम उसे दिया गया है उसे पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। तो ये सोचते हुए अमन जल्दी से रात को ही अपने कमरे से बाहर निकल गया था और पूरे शहर की सबसे बड़ी ऊंची बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर वो अपनी नजरें घुमाने लगा था। अब अमन ने सोच लिया था उसे अपनी जादुई शक्ति का ही प्रयोग करना होगा। वैसे उसे जिन्नात को ढूंढना होगा जिन तीन जिन्नातों की वजह से किसी के लिए इंसानों को कुछ ज्यादा ही परेशानी हो रही है। तो इसीलिए अमन उसे शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग में ऊपर पहुंच चुका था और वहां से खड़े होकर उसने शहर को चुपके चुपके को देखना शुरू कर दिया था। अमन के पास इतनी पावर थी कि वो कितने ही हजारों किलोमीटर दूर से खड़ा होकर बहुत ही बारीकी से सारी चीजों को देख सकता था। तो जैसे ही अमन ने सारी चीज वहां पर से खड़े होकर देखना शुरू किया, उसने चारों तरफ पूरे शहर में अपनी आंखें घुमा ली थी और अचानक से एक जगह जाकर उसकी आंखें रुक गई थी। तब अमन ने थोड़ा सा जूम करके अपनी आंखों को वहां देखा था तो उसके होश उड़ गए थे। उसने देखा कि उसका ही एक चिन्ह एक लड़की के साथ बड़े ही बुरी तरह से बदतमीजी कर रहा था। जैसे ही अमन ने ये देखा, उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था और उसे समझते देर नहीं लगी कि जरूर यही एक चिन्ह है। उसमें तीन चिन्ना में से एक चिन्ह ये होगा जो ऐसी हरकत कर रहा था। तो इसीलिए अमन ने वहीं खड़े होकर जादुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरंत वो उस जगह पर पहुंच चुका था और वहां जाकर उसने देखा कि एक चिन्नात ने एक बड़े ही खूबसूरत नौजवान लड़के का रूप लिया हुआ था और उसने एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की के दोनों हाथों को बांध कर रखा हुआ था और उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था और वो बड़ी ही बुरी तरह से उसके साथ जिस्मानी रिश्ता बना रहा था और वो लड़की रो रही थी, चिल्ला रही थी, छोड़े जाने की गुहार लगा रही थी, लेकिन उस चिन्नात के कान पर चू तक नहीं रेंग रही थी। और जैसे ही अमन वहां आया, अमन ने उस चिन्ह को पीछे से पुकारा था और जैसे ही उस चिन्ह ने रात में उस वक्त अपने कमरे में किसी की आवाज सुनी, उसका गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया था और अचानक से जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा और अमन को अपने सामने देखा तो उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया था। तब तक अमन ने अपनी जादू शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसी लड़की के नग्न बदन को कपड़ों से ढक दिया था और एक फूंक उस लड़की की ओर मारी थी। क्या सजा देगा अमन उस चिन्ह को, जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।